ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय।
ॐ हरे कृष्णा। सभी भक्तों का स्वागत करना चाहेंगे आज के इस रविवार के कार्यक्रम में। आज हम श्रीमद् भागवत के 11वें स्कंद की तीसरे अध्याय का तीसरा श्लोक इस पर चर्चा करेंगे। आप लोग मेरे पीछे दोहराइए।
श्री अंतरिक्ष उवाच एभिर्भूतानि भूतात्मा महाभूतै महाभुज ससर्ज उच्च अवचार्याद्य स्वमात्रात्म प्रसिद्धये। श्री अंतरिक्ष उवाच एभिर्भूतानि भूतात्मा महाभूतै महाभुज ससर्ज उच्च अवचान्याद्यः स्वमात्रात्म प्रसिद्धये। श्री अंतरिक्ष उवाच एभिर्भूतानि भूतात्मा महाभूतै महाभुज ससर्ज उच्च अवचानाद्य स्वमात्रात्म प्रसिद्धये।
अनुवाद और तात्पर्य इसी भक्ति वेदांत स्वामी शिल प्रभुपाद द्वारा। श्री अंतरिक्ष ने कहा, कोई जानता है कौन है ये श्री अंतरिक्ष? ग्यारहवें स्कंद में नव योगेंद्र जो कि महाराज निमि से मिलते हैं, तो नव योगेंद्र में से एक हैं श्री अंतरिक्ष, और उन्होंने ये श्लोक कहा है। श्री अंतरिक्ष ने कहा, हे महाबाहु राजा यानी महाराज निमि, भौतिक तत्वों को क्रियाशील बनाकर समस्त सृष्टि के आदि आत्मा ने उच्चतर तथा निम्नतर योनियों के जीवों को उत्पन्न किया है, जिससे ये बद्ध आत्माएं अपनी अपनी इच्छा अनुसार इंद्रिय तृप्ति अथवा चरम मोक्ष का अनुशीलन कर सके। तात्पर्य, श्री विश्वनाथ चक्र ठाकुर के अनुसार इस श्लोक में माया का वर्णन उसी शक्तियों अर्थात गुणों के वर्णन के माध्यम से हुआ है। भगवद गीता में भगवान कृष्ण ने माया को गुणमयी अर्थात भौतिक गुणों से युक्त कहा है। कृपया मोबाइल बंद कर दीजिए। नहीं तो महाराज अंतरिक्ष में ले जाएंगे आप लोगों को। इस श्लोक में भौतिक गुणों को प्रचंड रूप से उच्छवचानी अर्थात उच्च तथा निम्न योनियों इस संदर्भ में बतलाया है। जिस तरह विविध योनियां प्रकट होती हैं, उसी तरह उनमें सुंदरता, कुरूपता, शक्तिमत्ता, दुर्बलता आदि गुण उनमें प्रकृति के गुणों के समान पाठ के अनुसार पाए जाते हैं। श्रील जीव गोस्वामी के अनुसार भगवान की सृष्टि का वास्तविक प्रयोजन केवल एक ही है। ध्यान से सुनिए, भगवान की सृष्टि का प्रयोजन केवल एक ही है। भगवान की भक्ति को अग्रसर कराने के लिए सुविधा प्रदान करना। यद्यपि यह कहा गया है कि भगवान इंद्र तृप्ति सुलभ बनाते हैं, किंतु यह समझना होगा कि भगवान बद्ध जीवों की मूर्खता को अंततः कभी क्षमा नहीं करते। भगवान इंद्र तृप्ति को सुलभ इसलिए बनाते हैं, मात्रा प्रसिद्ध है ये, जिससे जीवों को धीरे धीरे ज्ञान हो जाए कि भगवान के बिना भोग करना व्यर्थ है। हर जीव कृष्ण का जीवांश है। वैदिक वाङ्मय में भगवान ने एक विधान दिया है जिससे सारे जीव धीरे धीरे अपनी मूर्खता की प्रवृत्ति को समाप्त कर लें और उसकी शरण में जाने के महत्व को समझें। भगवान निसंदेह समस्त सौंदर्य, आनंद तथा संतोष के आगार हैं और हर जीव का धर्म है कि वह भगवान की प्रेमा भक्ति में रत हो। यद्यपि ऊपर की सृष्टि के दो प्रयोजन लगते हैं, किंतु यह समझ लेना होगा कि अंततः प्रयोजन केवल एक ही है। इंद्र तृप्ति की व्यवस्था अंततः जीवों को भगवत धाम वापस ले जाने के एकमात्र प्रयोजन के लिए है। इस अध्याय का शीर्षक है माया से मुक्ति, या इस भौतिक प्रकृति से मुक्ति। और इस सुंदर श्लोक में महाराज अंतरिक्ष वो बता रहे हैं कि कैसे भगवान की ये जो सृष्टि है, ये सृष्टि एकमात्र उपाय या एकमात्र इस सृष्टि का प्रयोजन अभिप्राय एक ही है, और वो यह है हमें इस भौतिक सृष्टि से भगवान की सृष्टि में ले जाना। तो आज हम हमारे प्रवचन में चर्चा करेंगे। हम कई बार सुनते हैं कि माया देवी वो हमें भगवान से दूर ले जाती है। चैतन्य चरितामृत में ये सुंदर श्लोक है, कृष्ण भूलिया जीव भोगवांछा करे, निकटस्थ माया तारे झपटिया धरे। कृष्ण भूलिया जीव भोगवांछा करे, जब कृष्ण को भूलकर जीव भोग की वांछा करता है। देखिए इस श्लोक में ये कहा गया है कि भोग की वांछा तभी होती है जब कृष्ण को जीव भूलता है। तो जब हम कृष्ण को भूलते हैं तो उसके साथ साथ ऐसा नहीं कि कृष्ण को भूलना और भोग वांछा ये अलग अलग समय पर आती है हमारे अंदर। जैसे ही कृष्ण भूलिया वैसे ही भोग वांछा, या जैसे ही भोग वांछा वैसे ही कृष्ण भूलिया। और फिर कोई व्यक्ति यदि ये कहे कि ठीक है, यदि कुछ समय के लिए मैंने कृष्ण को भूल लिया मैं, और यदि भोग की वांछा मैंने कर ली, तो इसमें हर्ज क्या है? तो आगे फिर इस श्लोक में कहा गया है, निकटस्थ माया तारे झपटिया धरे, कि इसमें हानि क्या है कि जो माया देवी है जो कि निकट खड़ी है जीव के एकदम निकट, जैसे परमात्मा जीव के निकट है वैसे माया भी जीव के निकट है, दोनों जीव के निकट है। ये जीव के ऊपर निर्भर है कि जीव किसे अनुमति देता है झपटने के लिए, परमात्मा को या माया देवी को। तो निकटस्थ माया तारे झपटिया धरे, जो माया देवी निकट है वो झपट लेती है उस जीव को अपने जंजाल में। तो इस श्लोक से हमें ये समझ में आ रहा है कि माया देवी जो है वो हमें भगवान श्री कृष्ण से दूर ले जा रही। दैवी येष गुणमयी मम माया दुरत्यया, ये भी कहा भगवान स्वयं कहे हैं श्लोक। परंतु इस श्लोक में अंतरिक्ष महाराज कह रहे हैं कि हम उसी माया के सहारे इस भौतिक संसार से बाहर निकल सकते हैं। तो जो माया बद्ध जीवात्मा को नष्ट स्मृति में लगाती है, भगवान की विस्मृति में जो लगाती है, वही माया देवी जीव को कृष्ण अनुस्मृति में लगा सकती है। और ये आज हम समझेंगे कि कैसे माया देवी के सहारे हम भगवत धाम जा सकते हैं। उनकी कृपा किन प्रकार से हमारे अंदर है, जैसे कि हम पिछले रविवार को चर्चा कर रहे थे, किसकी? सपनों की दुनिया। कि कैसे श्रीमद् भागवत में अलग अलग जगहों पर बताया गया है कि ये स्वप्न का महत्व क्या है। तो आज हम चर्चा करेंगे कि भौतिक संसार में श्रीमद् भागवत के अनुसार इस भौतिक सृष्टि में माया देवी के जो जो कार्यकलाप हैं, उन कार्यकलापों को हम कैसे उनसे साक्षात्कार लेकर भगवान की भक्ति में कृष्ण अनुस्मृति में लग सकते हैं। कृष्ण विस्मृति से कृष्ण अनुस्मृति, ये ध्यान में रखिए। तो श्रील प्रभुपाद अपने प्रवचन में उन्होंने कहा कि एक जो भगवत भक्ति का प्रचारक होता है वो और माया देवी दोनों के एक ही काम है। क्या काम है? जीव को भगवान की तरफ ले जाना। दोनों के काम एक ही है, जीव को भगवान की तरफ ले जाना। तो प्रचारक जो है वो भगवान का गुणगान कर भगवान की लीलाओं का कथन कर वो बद्ध जीवात्मा को भगवान की तरफ आकर्षित करता है। तो यदि कोई उस कथन से, उसे सुनने से कोई व्यक्ति यदि आकर्षण पैदा कर ले तो ठीक है, यदि नहीं तब फिर प्रचारक माया देवी को इशारा करता है, या फिर भगवान प्रचारक के द्वारा माया देवी को इशारा करते हैं कि ये बातों से मानने वाले जीव भूत नहीं है, इनको पीछे से थोड़ी कुछ लात देनी पड़ेगी। तो माया देवी फिर जब बद्ध जीवात्मा उससे समझ नहीं पाता तो माया देवी फिर थोड़ा पीछे से धक्का मारती। पहले केवल धक्का मारती है, फिर यदि उस धक्के से भी कोई उठे नहीं तो फिर थोड़ा धक्का और जोर से होता है, फिर वो धक्का लात में परिणित हो जाता है। तो माया देवी उसी प्रकार से जीव को भगवान की तरफ धक्का मार रही है। तो कईयों की गाड़ी जो है वो अपने आप स्टार्ट हो जाती है, कईयों की गाड़ी धक्का स्टार्ट, परंतु दोनों का प्रयोजन एक ही है, भगवान की तरफ जीव को मोड़ना। जैसे कि शायद मराठी में भी ये जो शब्द है शिक्षा, इसके दो अर्थ होते हैं ना, क्या है दोनों अर्थ? शिक्षा, शिक्षक एक अर्थ है एजुकेशन, और शिक्षा का दूसरा अर्थ है सजा, पनिशमेंट। तो जो पुलिस डिपार्टमेंट है और जो एजुकेशन डिपार्टमेंट है, दोनों शिक्षा दे रहे हैं। तो यहां पर श्रील प्रभुपाद जी के अनुसार माया देवी वो पुलिस डिपार्टमेंट है जो उस प्रकार की शिक्षा देती है, और जो भगवान के भक्त हैं, जो भगवान के विषय में प्रचार कर रहे हैं, वो एजुकेशन डिपार्टमेंट के समान है, वो भी शिक्षा दे रहे हैं। तो हमारे ऊपर निर्भर है कि हमें कौन सी शिक्षा ग्रहण करनी है, किसमें हमें प्रशिक्षित होना है, ये हमारे ऊपर निर्भर है। तो चार शिक्षाएं वो एजुकेशन डिपार्टमेंट की, चार शिक्षाएं जो कि हम माया देवी से सीख सकते हैं, आज इसके विषय में हम चर्चा करेंगे। तो ये कौन सी चार शिक्षाएं हैं जो माया देवी हमें दे रही हैं भगवान श्री कृष्ण की अनुस्मृति प्राप्त करने के लिए, और इसके साथ साथ हम चर्चा करेंगे कि इस माया की सृष्टि में जो तत्व हैं पंच महाभूत, ये पंच महाभूत इनसे कैसे हम शिक्षा ले सकते हैं इन चार शिक्षाओं के संदर्भ में। ठीक है, समझ में आ रहा है कि पहले चार साक्षात्कार कौन से हमें लेने हैं इस भौतिक सृष्टि से, और इस भौतिक सृष्टि में जो पंच महाभूत हैं, सब जानते हैं पंच महाभूत, तो पंच महाभूत इन एक एक साक्षात्कार जो हम लेंगे इनसे कैसे ये संबंधित है। तो सबसे पहली शिक्षा या साक्षात्कार इस भौतिक संसार में रहते हुए ये हमें मिल सकता है, यहां पर हमें केवल अपना दृष्टिकोण बदलना है, और वही भौतिक सृष्टि, वही माया देवी हमें ऐसे दिव्य साक्षात्कार दे सकती है। तो सबसे पहला साक्षात्कार यह है कि माया देवी ये हमें इस भौतिक संसार का जो इंद्रिय भोग है वो करते रहने में हमें हताश बनाती है, फ्रस्ट्रेटेड, कि माया देवी ही हमें फ्रस्ट्रेट करती है उन्हीं के द्वारा इंद्रिय भोग जो वो दे रही है उन्हीं में। तो माया देवी द्वारा दिया गया इंद्रिय भोग, माया देवी ही हमें उसमें हताश या त्रस्त या फ्रस्ट्रेट करती है उसमें। तो ये साक्षात्कार हमें, कौन सा साक्षात्कार, कि इंद्रिय भोग हमें त्रस्त करेगा, फ्रस्ट्रेट करेगा, ये साक्षात्कार कहां से मिलता है? माया देवी से ही मिलता है, और कहीं पर आपको जाकर इसका साक्षात्कार करने की आवश्यकता नहीं है। आपको इस भौतिक संसार से बाहर आध्यात्मिक संसार में जाकर इसकी साक्षात्कार करने की आवश्यकता नहीं है, यहीं पर सब अवेलेबल है। तो इसका ज्वलंत उदाहरण श्रीमद् भागवत में है, 11वें स्कंद में, पिंगला। पिंगला ये कौन थी, कोई जानता है पिंगला कौन थी? हाँ? एक वैश्या थी पिंगला। तो ये पिंगला ये एक उदाहरण है, ये जो पहला साक्षात्कार हम ले सकते हैं कि कैसे इंद्रिय भोग एक जीव को त्रस्त करता है। तो पिंगला, इसके विषय में कहा गया है कि ये एक ऐसे नगर में रहती थी जहां पर इसका बहुत बोलबाला था, इस वैश्या का, और सभी लोग पिंगला को जानते थे, बहुत प्रसिद्ध थी वो, एक वैश्या के रूप में बहुत प्रसिद्ध थी वो। और पिंगला क्योंकि वो वैश्या थी तो उसका वही व्यवसाय था। तो यहां पर एक दिन एक संध्या के समय पिंगला वो अपने आप को सजाए हुए अपने घर के सामने आंगन में वो खड़ी थी प्रतीक्षा में कि कोई ऐसा पुरुष आ जाएगा जो पूर्ण प्रकारेण पिंगला को संतुष्ट करेगा और धन भी बहुत दे पाएगा। तो पिंगला इस आशा में वो वहां पर खड़ी थी अपने आंगन में। रास्ते पर जो भी पुरुष गुजर रहा था सब पर नजर लगाए, सब पर आशा रखे, पिंगला प्रतीक्षा में थी। और जो भी पुरुष वहां से गुजरता उस रास्ते से, तो पिंगला उस पुरुष की तरफ उत्सुकता से देखती कि हाँ शायद यह वो पुरुष है जिसके पास इतना धन है आज और जो आज मुझे संतुष्ट कर पाएगा। परंतु जैसे ही पिंगला इतनी उत्सुकता से उत्कंठा से प्रतीक्षा में देखती, वो पुरुष बिना देखे पिंगला को आगे निकल जाता। एक दो तीन ऐसे एक एक कर पुरुष जाते रहे और पिंगला हर एक पुरुष की तरफ देखते हुए अपनी उत्सुकता व्यक्त कर रही थी। और समय बीत रहा था, संध्या का समय बीत गया, बहुत घंटे अब पिंगला वहां पर खड़ी प्रतीक्षा में कि कोई ऐसा पुरुष आएगा जिसकी वो प्रतीक्षा में थी। तो पिंगला धीरे धीरे अब इतनी प्रतीक्षा में पिंगला का साक्षात्कार होने लगा उसके अंदर। और पिंगला का साक्षात्कार बहुत ही गहरा साक्षात्कार है, यहां तक कि 11वें स्कंद में अवधूत ब्राह्मण इन्होंने पिंगला से ये साक्षात्कार अपने जीवन में इन्होंने ट्रांसफर किया, पिंगला का साक्षात्कार। अवधूत ब्राह्मण जो बहुत बड़े भगवान के भक्त हुए और जिनसे शिक्षा महाराज यदु ने ली, तो महाराज यदु को अवधूत ब्राह्मण शिक्षा दे रहे हैं और अपनी शिक्षाओं में अवधूत ब्राह्मण ये पिंगला, उनके 24 गुरु हुए उनमें से पिंगला ये वैश्या एक गुरु थी, गुरु माना। अब तक यदि आप जो सुने हैं पिंगला के विषय में तो आपके मन में ये प्रश्न उठ सकता है कि पिंगला और गुरु एक वैश्या और वो भी इस प्रकार का व्यवहार वो कर रही है। परंतु इसके आगे जो पिंगला का साक्षात्कार बताया गया है श्रीमद् भागवत में, वो जब हम श्रवण करेंगे तो पता लगेगा कि ये पिंगला का साक्षात्कार है या कोई बहुत महान भक्त का साक्षात्कार। तो पिंगला अब तुरंत ये पूरी जो उसकी स्थिति, जो उसकी प्रतीक्षा की स्थिति और अब हताश हो गई, त्रस्त हो गई, जो इंद्रिय भोग को चाहती थी वो इंद्रिय भोग नहीं मिल पा रहा, तो अब पिंगला का साक्षात्कार क्या है? वो कहती है, संतम समीप रमणम रति प्रदम वित्त प्रदम नित्य इमं विहाय अकामदम दुख बयाधि शोक मोह प्रदम तुच्छम अहम भजेज्ञ। वो कहती है, अकाम दम दुख भय आदि शोक, कि मैं पिंगला यहां पर खड़ी इतने घंटों से मैं किसकी प्रतीक्षा कर रही हूं। वो अपने आप से पूछ रही है कि मैं किसकी प्रतीक्षा कर रही हूं। मैं उन पुरुषों की प्रतीक्षा कर रही हूं जो कि अकाम दम, या हम अपनी भाषा में कहेंगे जिनमें मेरी कामना पूरी करने का कोई दम नहीं, अकाम दम, जिनके अंदर कोई सक्षमता नहीं मेरी कामना को पूरी करने के लिए, जो कि स्वयं अपने आप में ही वो अपनी कामना पूरे करने के लिए मेरे पास आते हैं। क्योंकि ये सारे पुरुष ये सारे अपनी कामना पूरी करने के लिए किसी वैश्या के पास जाते हैं, तो इनकी कामना पूरी नहीं हुई है इसलिए मेरे पास आते हैं, और मैं इस आशा में हूं कि ये जो कि अपनी कामना रहित ये व्यक्ति जो कि इनकी कामना पूरी नहीं हुई है ये मेरी कामना पूरी करेंगे। अरे ये स्वयं भिखारी हैं, तो ये मुझे क्या देंगे धन। तो ये सबसे पहला साक्षात्कार। और वो कहती हैं कि ये सारे जो पुरुष हैं ये किससे बने हुए हैं, दुख भय आदि शोक, कि मैं इनके चेहरे पर ये ढूंढने का प्रयास कर रही हूं कि इनमें से कोई होगा जो मुझे संतुष्ट करेगा, परंतु इनके चेहरे पर क्या दिख रहा है मुझे, इनके चेहरे पर मुझे दिख रहा है दुख भय और शोक, इनसे इनका चेहरा बना हुआ भरा हुआ, और ऐसे पुरुषों से मैं आशा कर रही हूं। मोह प्रदम तुच्छम अहम भजेज्ञ, कि ऐसे तुच्छ इंद्रिय भोग की मैं प्रार्थना कर रही थी, आशा कर रही थी। और फिर वो कहती है कि इसके विपरीत ये सारे जो पुरुष मंडरा रहे हैं रास्ते पर, उत्कंठा से मैं आशा कर रही थी कि ये लोग आएंगे मुझे संतुष्ट करेंगे, इसके विपरीत एक ऐसे पुरुष हैं जो सबसे निकट है मेरे, संतम समीपे रमणम रति प्रदम, और वो कौन से पुरुष हैं, भगवान श्री कृष्ण। भगवान श्री कृष्ण जो कि परमात्मा स्वरूप में वो आदि पुरुष, वो आदि पुरुष जो सबसे समीप है, संतम समीपे, जो इतने समीप है मेरे, मैं उन्हें भूल रही थी और उनका संग छोड़कर मैं ये जो तथाकथित इस भौतिक संसार के पुरुष हैं इनके पीछे मैं भाग रही थी। तो ये पिंगला का साक्षात्कार कब हुआ, जब उसे इंद्रिय भोग नहीं मिला, और इंद्रिय भोग जब नहीं मिलता है तब ये साक्षात्कार माया देवी हमें देती है। और कई बार जब हम प्रयास करते हैं उत्कंठा से इस पिंगला की तरह इंद्रिय भोग या इंद्रिय जो विषय वस्तु है उसकी तरफ उत्कंठा से देखते हुए, और कई बार या बहुत बार ऐसा होता है कि वो विषय वस्तु हमारे सामने होती है परंतु हम उसे नहीं प्राप्त कर सकते, तब फिर माया देवी हमें क्या संकेत दे रही है, जो माया देवी ने पिंगला को संकेत दिया कि अरे इन पुरुषों के पीछे, इन इंद्रिय वस्तुओं के पीछे मत भागो, जो असली वस्तु तुम्हें संतुष्ट करने के लिए है वो तुम्हारे अंदर ही मैंने फिट कर रखी है, और वो है भगवान और भगवान की भक्ति जो कि हमारे हृदय के अंदर है, संतम समीपे। तो ये पिंगला का सबसे पहला साक्षात्कार जो कि हमारा भी होना चाहिए कि यदि हमें इस भौतिक संसार से बाहर निकलना है तो जब इंद्रिय भोग हमें नहीं मिलता तो हमें ये साक्षात्कार होना। और आप लोग सब अनुभव किए होंगे कि संसार में हम जो इच्छा करते हैं वो अक्सर इच्छा पूरी नहीं होती, हाँ इतना तो साक्षात्कार हो गया है कि नहीं, कि हमारी इच्छाओं का लिस्ट इतना लंबा है परंतु उन इच्छाओं के लिस्ट में से कितनी वस्तुओं में से हम संतुष्टि प्राप्त किए हैं, तो बाकी जब बच गए हैं जो कि पूरी नहीं हुई है इच्छाएं, तो ये साक्षात्कार हमें उससे होना चाहिए। और फिर पिंगला का अगला साक्षात्कार क्या है, बहुत ही सुंदर श्लोक है, इसमें पिंगला कहती है यदस्तिभिर्निर्मितवंशवंश स्तूनं त्वचा रोम नखै पिनद्धम् क्षरन्नवद्वारमगारमेतद् विन्मूत्रपूर्णम् मधुपैति कन्या। बहुत ही मधुर श्लोक है, वह ध्यान से सुनिए। पिंगला यहां पर कहती है कि मैं एक तो किन पुरुषों जिनके ऊपर सब दुख शोक और भय मंडरा रहा है इनसे मैं कुछ संतुष्टि प्राप्त करना चाहती थी, और इससे ज्यादा ये सारे जो पुरुष हैं मैं स्वयं मेरा जो शरीर है ये जो शारीरिक सुख जिसके पीछे मैं भाग रही हूं ये शरीर है क्या? तो अब ये हमारा जो ये शरीर है इसका कच्चा चिट्ठा निकालकर बता रही है या इसका एक्सरे, ये हमारे शरीर का एक्सरे रिपोर्ट पिंगला दे रही है। तो ये कहती है यद अस्ति भी, ये शरीर किससे बना है? ये शरीर की तुलना वो एक घर से करती है, जैसे कोई घर कोई बना रहा है, जैसे आपने देखा होगा बाहर हम वो गेट बना रहे हैं तो गेट बनाने से पहले अंदर वो तार डाला जाता है कि नहीं, ये सारे जो खंभे हैं ये दीवार हैं इनके अंदर तारे गई हैं, तो ये जो तारे हैं या वो जो स्टील या रॉड इसकी तुलना पिंगला करती है ये शरीर के अंदर जो अस्थि जो हड्डियां होती हैं ये सब जैसे ये बीम गए हैं लोड बेयरिंग बीम क्रॉस बीम्स ये सारे जो बीम गए हैं ना, तो पिंगला हमारे शरीर के अंदर ये जो कंकाल कौन से स्केलेटन ये समझ मत कि बाहर से जो इतना सुंदर हमारा शरीर दिखता है वही शरीर है हमारा, ये पूरा जो बाहरी चाम जो है इसे पकड़े रखे हैं अंदर का कंकाल, और उसका जब आप एक्सरे देखते हैं तो उसमें कोई सुंदरता दिखती नहीं। जब किसी को आप अपना फोटो दो तो आप अपना एक्सरे का फोटो नहीं देते, कंकाल का फोटो या लोग गीत गाते हैं कि मैं मेरा हृदय तुम्हें मेरा दिल तुम्हें दे रहा हूं, तो यहां से उसका वो जो अंदर का यहां का जो कंकाल है उसका एक्सरे निकाल कर नहीं देते, ये देखो ये मेरे दिल का जो एक्सरे है उसके अंदर देखो क्या है, क्या है? कचरा भरा हुआ है, वही दिखेगा उस एक्सरे के अंदर। तो पिंगला कहती है कि जैसे एक घर को उठाए हुए रहता है ये सारा ये सारे जो रॉड्स होते हैं बीम्स क्रॉस बीम, उसी प्रकार से इस शरीर को उठाए हुए हैं ये अस्थि, और फिर इनमें माल भरा जाता है कि नहीं, ये सारे जो सलाखें होती हैं लोहे की ये सलाखों के अंदर माल भरा जाता है, तो क्या माल भरा है इसमें? सीमेंट रेती का माल भरा है, और इस कंकाल में क्या माल भरा है? वो तो बाहर हो गया, अंदर सुनना चाहेंगे? पिंगला कहती है कि अंदर माल भरा है विन मूत्र पूर्णम मद उपैति, कि अंदर मल मूत्र ये जो म्यूकस पस क्या कहते हैं उसे मवाद ये सब कुछ ये माल अंदर भरा है, और बाहर से केवल उसको जो चाम है वो चाम को थोड़ा अच्छा पेंट मार दिया हमने। पिंगला कहती है तो कोई व्यक्ति कहे भाई ठीक है सब तो अंदर है ना, अंदर है बाहर से तो कुछ दिखता नहीं, बाहर से तो सब एकदम गोरा गोरा सब जो चाम है वो एकदम उस प्रकार से लोग गुणगान करते हैं कि लोग ये एडवर्टाइजमेंट में तुम्हारी त्वचा मखमली मुलायम क्योंकि हमारा क्रीम पोत रहे हैं इसलिए, और यदि ये क्रीम नहीं पोतो तो ये मखमली सी मुलायम जो त्वचा है ये मुरझा जाएगी, ये सब बताते हैं ये सब इश्तेहार में। तो कोई व्यक्ति ये पूछे कि भाई ये सब तो अंदर है ना, बाहर थोड़ी दिखता है। तो पिंगला कहती है क्षरण नवत द्वारम अगारम एतत्, कि ये जो घर है इसमें नौ द्वार हैं और ये जो नौ द्वार हैं इन नौ द्वारों से रोज ये अंदर जो माल भरा हुआ है वो बाहर निकलता रहता है, सैंपल आता रहता है बाहर। तो नव द्वारे पूरे देही भगवान भी कहते हैं, ये बच्चों को बैठ जाने के लिए कहो, या तो बाहर रहो या फिर अंदर बैठो। तो नव द्वार, ये नव द्वार के विषय में कहा गया है। पिछला कहती है कि ये जो नौ द्वार हैं, हमारे दो आंखें, जो दो नासिका, दो कान, एक मुख, ये जो नव द्वार हैं इनमें से रोज ये जो अंदर माल भरा हुआ है वो सब बाहर निकलता रहेगा। और ये पिघला का साक्षात्कार कि यह ये जो घर है, इन सब से बना हुआ ये घर, इसमें मैं इंद्रिय भोग ढूंढ रही हूं। तो ये साक्षात्कार पिघला का है। हालांकि जब हम ये श्लोक पढ़ते हैं तो समझ में आ रहा है हमारा भी शरीर इसी का बना है, कंकाल मल मूत्र नव द्वार ये सब का। परंतु जैसे ही प्रवचन खत्म होता है तुरंत फिर जब अपने आप को आईने में देखते हैं, इतना बुरा नहीं, थोड़ा ज्यादा ही बोल दिया प्रवचन में, तुरंत फिर वो साक्षात्कार फीका पड़ने लग जाता है। और फिर पिंगला का अगला साक्षात्कार है आशा ही परमम दुखम नैराश्यम परमम सुखम, कि यदि किसी व्यक्ति को परम दुख का अनुभव करना है और किसी व्यक्ति को परम सुख का अनुभव करना है तो क्या करना है। तो यदि किसी को परम दुख का अनुभव करना है तो सुनिए पिंगला क्या कहती है कि परम दुख का अनुभव करने के लिए आशा इस भौतिक संसार में इस भौतिक इंद्रिय भोग के प्रति आशा रखिए कि एक दिन मुझे संतुष्टि मिलेगी इस इंद्रिय भोग से। तो जब ये आशा से कोई व्यक्ति जीता है अपना जीवन, आशा ही परमम दुखम, ये परम दुख का कारण है, नैराश्यम परमम सुखम, और यदि होपलेस कोई बन जाए इस भौतिक संसार के विषय में, आशाहीन परमम सुखम, ये शुरुआत है कि परम सुख की। तो ये सबसे पहला साक्षात्कार जिसमें पिंगला जो पंच महाभूत से जो शरीर बना हुआ है उसका एक्सरे लेकर ये सारे साक्षात्कार हमें सुना रही है। तो सबसे पहला साक्षात्कार हमें इस भौतिक प्रकृति से यह मिलता है कि जब हम इंद्रिय भोग की आशा से जीते हैं और जब त्रस्त हताश हो जाते हैं तो पिंगला के जैसे साक्षात्कार हमारा होना चाहिए। संतम समीपे, वो आदि पुरुष जो मेरे इतने निकट हैं, इतने समीप हैं, उनसे मुझे अपना रिश्ता स्थापित करना है, उन आदि पुरुष से। और अब दूसरा साक्षात्कार यह है कि इस भौतिक सृष्टि में, भौतिक सृष्टि जो भी तत्व पैदा किए हैं, अलग अलग तत्व जो हैं इस भौतिक सृष्टि के, उन तत्वों से हम शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं। और 11वें स्कंद में इसी प्रसंग में अवधूत ब्राह्मण, जब महाराज यदु पूछते हैं अवधूत ब्राह्मण से कि आप बहुत साक्षात्कारी व्यक्ति दिखते हो, ऐसा लगता है कि आपने इस पूरी सृष्टि का बहुत गहरा साक्षात्कार लिया। तो अवधूत ब्राह्मण अब महाराज यदु को कहते हैं संति में गुरवो राजन बहवो बुद्धि उपाश्रित यतो बुद्धिम उपादाय मुक्तो तामी तान श्रणो, कि मैं इस देह में रहते हुए मुक्ति को प्राप्त कर चुका हूं। वो कहते हैं कि मैं जीवन मुक्त हो गया। तो महाराज यदु पूछे, भाई कैसे कैसे आप जीवन मुक्त हो गए? तो अवधूत ब्राह्मण महाराज यदु को कहते हैं, संति में गुरवो राजन, हे राजन बहुत से गुरु मैंने अपनाए हैं अपने जीवन में। कितने? 24 गुरु। और अपनी बुद्धि से मैंने इन गुरुओं से शिक्षा ली। ये गुरु आकर मुझे लेक्चर नहीं दिए हैं। पिंगला ने अवधूत ब्राह्मण को कोई प्रवचन नहीं दिया। और भी जितने भी गुरु हुए, ये 24 गुरु, इन्होंने किसी ने भी अवधूत ब्राह्मण को बिठाकर कोई प्रवचन आदि नहीं दिया। अवधूत ब्राह्मण ने अपनी ही बुद्धि से इन तत्वों से शिक्षा ग्रहण कर ली। तो अवधूत ब्राह्मण हमें सिखा रहे हैं कि इस भौतिक सृष्टि में माया देवी बिठाकर हमें प्रवचन नहीं देगी। अब मैं तुम्हें माया में डालने वाली हूं, ठीक है? कल ठीक सुबह 6:15 बजे जब तुम माला हाथ में लोगे, तब मैं तुम्हें माया में डालूंगी। माया देवी कोई प्रवचन ऐसा नहीं देगी या बताएगी भी नहीं। यहां पर अवधूत ब्राह्मण कहते हैं, बुद्धि उपादाय, मैंने अपनी बुद्धि को लगाकर माया देवी के सारे जो तत्व हैं, विशेष रूप से जो पंच तत्व, पंच महाभूत, इनसे क्या शिक्षा उन्होंने ली? बहुत ही गहरी शिक्षा है। सबसे पहले उन्होंने पृथ्वी को देखा। ये पंच महाभूत कौन कौन से हैं? पृथ्वी, जल, वायु, आकाश और अग्नि। तो सबसे पहले पृथ्वी तत्व। पृथ्वी तत्व से अवधूत ब्राह्मण ने एक साक्षात्कार लिया, और वो कि कैसे हमें अपने जीवन में सहिष्णु होना है, सहनशीलता हम कैसे जागृत करें, ये हम पृथ्वी देवी की तरफ देखकर अपने में सहनशीलता जागृत कर सकते हैं, टॉलरेंस। और पृथ्वी देवी कितनी सहनशील है इसकी कोई कल्पना नहीं हम कर सकते। कि देखिए हम सब लोग बैठे कहां पर हैं? पृथ्वी के ऊपर। ये पृथ्वी के ऊपर विशेष रूप से भारत में बोझ बहुत बढ़ रहा है, क्योंकि जनसंख्या इतनी बढ़ती जा रही है। तो देखिए पृथ्वी जो इतने सारे जीवों को धारण किए है, इतना बोझ, और वो भी इस भूमि पर क्या क्या करते हैं जीवात्मा, सभी प्रकार के पाप कार्यों में लगे हैं, सभी प्रकार की गंदगी अब इस कलयुग में इस पृथ्वी को उसे भी ढोना पड़ता है। ये इंडस्ट्रियल वेस्ट, और जैसे कि हमने कहा ये जो शरीर है यहां से इतनी गंदगी सब कहां जाती है? सब इस पृथ्वी में। और यदि भारत में देखा जाए तो पृथ्वी देवी के ऊपर बहुत ही साफ साफ सारी गंदगी दिखने मिलती है। इतना नहीं तो लोग केवल थूकते रहते हैं, यहां वहां जहां तहां केवल थूकते रहते हैं पृथ्वी देवी के ऊपर। और जहां पर लिखा जाए थूको मत, वहां पर ज्यादा थूका जाता है। ये पान, गुटखा और इत्यादि ये सब खा खा कर थूकते रहो थूकते रहो। अब यदि कोई हमें सुला दे और हमारे ऊपर यदि 10 व्यक्ति थूकते रहे दिन भर, तो हमें कैसा लगेगा? तो ये पृथ्वी देवी के ऊपर इतनी सारी गंदगी ये सब सहन करे। और इससे ज्यादा कहा गया है, ये सब तो खैर पृथ्वी देवी सहन कर लेती हैं, इससे ज्यादा पृथ्वी देवी जो सहन कर रही है वो है कलयुग में सारे जीवों के पाप। ये इसके वजह से पृथ्वी देवी उनका भार बढ़ता जाता है पाप के वजह से। और कितना पाप हो रहा है क्या इसकी कोई हम कल्पना कर सकते हैं? हर क्षण कितना पाप हो रहा है इस पृथ्वी पर। ये 4 नियम हर क्षण कितने जीव तोड़ रहे हैं, और इससे भी ज्यादा कितने सारे नियम तोड़े जा रहे हैं, शास्त्र के विरुद्ध कितने कार्य हो रहे हैं, कोई इसकी सीमा नहीं। हर क्षण इतना पाप हो रहा है। तो ये सहनशीलता, ये गुण पृथ्वी देवी से अवधूत ब्राह्मण ने लिया, और फिर पानी से जल, जल से जल के तीन गुण अवधूत ब्राह्मण ने देखे कि जल जो है वो बहुत स्वच्छ होता है। जल का एक गुण है स्वच्छता। गंदगी कौन हम लोग डालते हैं जल में, जो स्वाभाविक रूप से जो जल होता है वो बहुत स्वच्छ रहता है, तो स्वच्छता का गुण ये जल का एक गुण है। और जल बहुत मृदु मृदु वस्तु है, तो एक संत को और एक भगवान के भक्त को उसी प्रकार से मृदु एवं स्वच्छ होना चाहिए। और तीसरा गुण जल का यह है कि जल की जो ध्वनि है वो बहुत मधुर होती है। जैसे आपने अनुभव किया होगा जब यहां से जल गिरता है इस फाउंटेन से, तो कई बार लोग ऐसी ध्वनि, ये जो जल की जो ध्वनि है इसका एल्बम बनाते हैं, और रात को सोते समय या अपने आप को शांत करने के लिए वो चलाते हैं, वो जल की जो आवाज है नदी या समुद्र की भी जो आवाज है वो बहुत मधुर है सुनने के लिए, कर्णों के लिए। तो ये तीन गुण जल के, स्वच्छता, मृदुता और जो उनकी ध्वनि इतनी मधुर होती है, मधुरता ध्वनि में। तो उसी प्रकार से जीव को ये तीन गुण अपने अंदर जल से सीख कर लेना चाहिए। अग्नि, अग्नि से दो शिक्षाएं अवधूत ब्राह्मण ने ली कि अग्नि एक ऐसी वस्तु है जो किसी भी दूषित वस्तु को शुद्ध कर दे। अग्नि चाहे कितने भी दूषित, जैसे कि ये शरीर, जब जीव निकल जाता है शरीर से तो शरीर प्रदूषित होना शुरू हो जाता है, तो इस शरीर को जब अग्नि में डाला जाता है तो अग्नि इस शरीर को शुद्ध कर देती है। तो अग्नि जो है वो जितना भी प्रदूषण किसी में होता है, जैसे कि घी जब बनाया जाता है तो उसे जब उबालते हैं तो जितना भी प्रदूषण है वो अग्नि के कारण ऊपर आता है, और अग्नि के कारण वो सारा प्रदूषण, पानी को उबाला जाता है तो सारा प्रदूषण पानी से निकल जाता है। तो अग्नि के अंदर ये गुण है कि सारे प्रदूषण को बाहर निकाल देती है अग्नि। और दूसरा एक गुण या दूसरी शिक्षा अवधूत ब्राह्मण ने अग्नि से यह ली कि बहुत सावधानी से अग्नि के संपर्क में आना चाहिए, अपने आप को सावधानी बरतनी चाहिए अग्नि के संपर्क में जब हम आए। तो अवधूत ब्राह्मण ने शिक्षा ली कि जो महान पुरुष होते हैं वो अग्नि के समान है कि जो हमारा सारा प्रदूषण दूर कर देते हैं, परंतु उनका संग यदि करना है तो सावधानी से, कि यदि अपराध हुआ तो वही अग्नि हमें जलाकर भस्म भी कर सकती है। तो ये दो शिक्षाएं अग्नि से अवधूत ब्राह्मण ने ली। वायु, हवा, इनसे दो शिक्षा अवधूत ब्राह्मण ले रहे हैं। एक तो वायु जो है वो सबके लिए समान रूप से रहती है, वायु कभी कुछ डिस्क्रिमिनेशन नहीं करती, वो समान रूप से, यदि वायु गटर के ऊपर से जा रही है तो ऐसा नहीं कि अब गटर आगे आ गया तो रुक जाओ, वही वायु उस गटर की जो दुर्गंध है उसे लेकर जाएगी, और वही वायु आगे यदि कोई फूल का बागीचा है जिसमें सुगंधित सुगंध है तो वो सुगंध को भी लेकर जाती है, इसमें कोई भेदभाव नहीं करती वायु। तो जैसे वायु समान रहती है, कोई भेदभाव नहीं वायु में, उसी प्रकार से जो महापुरुष होते हैं उनमें कोई भेदभाव नहीं होता, वो समान रहते हैं। तो ये शिक्षा, पहली शिक्षा वायु से ली। और वायु से एक और शिक्षा अवधूत ब्राह्मण ये लेते हैं कि वायु जो है वो निर्भय रूप से बहती रहती है, कोई भय नहीं वायु को, चाहे कहीं पर उजाला है या कहीं पर गुप अंधेरा, वायु दोनों जगह पर अभयता से या निर्भयता से बहती रहती है। तो उसी प्रकार से एक जो महापुरुष हैं, वो किसी भी स्थिति से भयभीत नहीं रहते। चाहे कोई व्यक्ति पूर्ण प्रकारेण माया में है या कोई व्यक्ति भक्ति के उच्चतर स्तर पर है, जो महान पुरुष हैं, वो दोनों का संग लेने में भयभीत नहीं रहते, या वो दोनों से शिक्षा ले सकते हैं या दोनों से साक्षात्कार ले सकते हैं। तो ये वायु जो है, हवा, इसका ये दो गुण जो शिक्षाएं हैं ये इन्होंने ली। और फिर खम या आकाश जिसे कहते हैं, आकाश से दो शिक्षाएं अवधूत ब्राह्मण ने ये ली कि सबसे पहले आकाश इतना विशाल है कि इस पृथ्वी पर चाहे कुछ भी होता रहे, आकाश पर उसका कोई असर नहीं पड़ता। इस पृथ्वी पर चाहे कोई मरे, कोई पैदा हो, या कुछ भूकंप हो जाए, कुछ भी हो जाए, अपना आकाश बना रखता है ऊपर, उस पर इसका कोई असर नहीं पड़ता। तो उसी प्रकार से एक महापुरुष को आकाश के समान होना चाहिए, जो कि प्रभावित न हो किसी भी स्थितियों में। और एक आकाश का गुण यह है कि आकाश जो है वो सबको समाये हुए है। कोई भी वस्तु या कोई भी व्यक्ति इस आकाश से परे नहीं, सब इस आकाश के अंदर ही। उसी प्रकार से जो महान पुरुष हैं, उन्हें आकाश की तरह होना चाहिए, ऑल अकोमोडेटिंग जिसे कहते हैं। तो ये दो शिक्षाएं आकाश से इन्होंने, तो ये पंच महाभूत, इनसे ये शिक्षाएं अवधूत ब्राह्मण ले रहे हैं। तो माया देवी के अंदर ये पंच महाभूत, हम भी जो पंच महाभूत से बने हैं, हम भी ये साक्षात्कार ले सकते हैं माया देवी के ये पंच महाभूतों से। और तीसरा साक्षात्कार यह है कि माया देवी वो इन्हीं पंच महाभूत को लेकर हमें नम्र बनाती है इस संसार में। कि यदि कोई व्यक्ति ये सोचे कि मैं इस भौतिक संसार में अहंकार के द्वारा कर्ता अहम इति मन्यते, कि मैं करता हूं, मैंने ये मेरा घर बनाया है, मैंने ये राज्य खड़ा किया है, मैं इसका मालिक हूं, सृष्टि करता हूं, ये वो, तो जब इस प्रकार से अहंकार बढ़ता है तो माया देवी उस अहंकार को चूर चूर करने के लिए यही जो पांच तत्व हैं, इन्हें लेकर हमें साक्षात्कार देती है। कि जैसे पृथ्वी, अर्थ एलिमेंट जो है, पृथ्वी ये तत्व, ये जो पृथ्वी तत्व है, यदि हम बहुत गर्व करें कि भाई मेरा घर देखो, मेरा ये लैंड है, पेपर भी है मेरा लैंड, ये मेरी भूमि, इतना एकड़ ये मेरा है, मेरा नाम है, मेरा बंगला, मेरा घर, सब कुछ मेरा, तो माया देवी उसी पृथ्वी के तत्व को लेकर हमारा अहंकार चूर चूर कैसे कर सकती है। थोड़ा सा वो जो हमारा लैंड है पृथ्वी, उसे हिला दिया थोड़ा सा, क्या कहते हैं उसे, भूमि का कंपन, भूकंप, थोड़ा सा भूकंप, मतलब पृथ्वी देवी यदि एक हिचकी ले ले या एक ढकार ले ले, थोड़ा सा करवट बदल ले, तो ये जो हमारा सारा साम्राज्य है, फिर न्यूज़पेपरों में आता है लाखों करोड़ों लोग मर गए भूकंप में, और भूकंप कितने समय तक, कुछ सेकंड, कुछ 4-5 सेकंड का ये भूकंप। तो यहां पर पृथ्वी देवी या माया देवी पृथ्वी का अंश लेकर हमें साक्षात्कार या नम्र बनाती है कि गर्वित मत हो। और दूसरा तत्व अग्नि, देखिए पृथ्वी पर हम अपनी सुरक्षा के लिए क्या कुछ नहीं बना सकते, परंतु वही पृथ्वी हमें नम्र भी बना सकती है जब भूकंप आता है। अग्नि, जो कि हमें जलाने के लिए सब कुछ पकाती है, वही अग्नि इस शरीर को जला भी सकती है। और अग्नि, माया देवी अग्नि को इस्तेमाल करती है, जैसे ये वॉल्केनो जिसे कहते हैं ज्वालामुखी, इसमें से जो लावा निकलता है, कई ऐसे ऐसे पूरे साम्राज्य हैं पाश्चात्य देश में और भारत में भी, जो कि पूरा शहर पूरा राज्य इस ज्वालामुखी के कारण अग्नि के कारण विध्वंस हो गया। तो अग्नि तत्व बहुत भयंकर है, अग्नि तत्व हमें जिला भी रहा है अग्नि तत्व, परंतु यदि माया देवी इस अग्नि तत्व को उस प्रकार से प्रयोग में ले तो हमें सब कुछ हमारा नष्ट भी कर सकती है ये अग्नि तत्व। आगे पानी, हम सब रोज पानी पीना चाहते हैं, पानी से नहाना चाहते हैं, पानी चाहिए, पानी ही हमारा जीवन है सब कुछ कहते हैं, परंतु वही पानी यदि ज्यादा मात्रा में आ जाए, यदि बाढ़ आ जाए नासिक में, तो गोदावरी में नहाने जाने के लिए पानी होना चाहिए ताकि अच्छी से नहाए, परंतु वही गोदावरी में यदि बाढ़ आ जाए तो वही पानी फिर सब कुछ विध्वंस कर देता है। तो पानी का तत्व माया देवी इस्तेमाल कर सकती है हमारे इस अहंकार को चूर चूर करने के लिए। और वायु तत्व, वही वायु तत्व जो कि जिसका हम सांस ले रहे हैं, वही वायु तत्व, इसी वायु में इतने सारे जो बीमारियां हैं, इसे क्या कहते हैं एयरबोन डिजीजेस, ये इसी वायु के वजह से इतनी सारी बीमारियां फैलती हैं। तो माया देवी उसी वायु तत्व को लेकर हमें बीमार बना सकती है। और फिर जो तूफान, ये साइक्लोन और ये हरिकेन, ये सब जो आते हैं, ये क्या है? वायु। केवल वही वायु तत्व, बस जोर से बहने लगी वायु, जब एकदम मंद समीर बहती है तो अच्छा लगता है, बैठे आज अच्छी हवा चल रही, तो परिवार के साथ चलो थोड़ा बाहर घूमने टहलने चलते हैं, अच्छी हवा चल रही है नासिक में। और यदि वहां उसका स्पीड माया देवी थोड़ा बढ़ा दे हवा का, वही मंद समीर यदि तूफान में परिणित हो जाए तो हम नहीं कहते चलो टहलने चलते हैं, तूफान बाहर आए तो तूफान में टहल कर आए, तब फिर केवल यही कहा जाता है अब भागो, बचाओ अपने आप को। ये सारे वैज्ञानिक ये भी कुछ नहीं कर सकते, फिर केवल एक ही चीज कहते हैं भागो, बस यही कह सकते हैं। तो वही वायु का तत्व ये इस प्रकार से हमारे अहंकार को चूर चूर कर सकता है। और फिर आकाश, यही आकाश का तत्व देखिए, जब दम घुटने लगता है, वही आकाश का तत्व जो कि हमें दम दे रहा है, वही आकाश का तत्व यदि कम हो जाए हमारे अंदर, कोई गला घोटने लग जाए, तो वो जो आकाश का तत्व है वो हमारे अंदर जब कम होने लगता है तो फिर किसी के प्राण भी जा सकते हैं। और भी उदाहरण है कि आकाश का तत्व कैसे हमें समझ आता है। आकाश का अर्थ है स्पेस। बंबई में इसका साक्षात्कार बहुत होता है लोगों को, कि बंबई की ट्रेनों में यदि थोड़ा सा आकाश मिल जाए आपको, स्पेस मिल जाए कहीं, तो ऐसा लगता है कि मानो स्वर्ग की प्राप्ति हो गई, कि एक सीट यदि खड़े होने के लिए भी जगह मिल जाए तो ऐसा लगता है कि स्वर्ग में अप्सराओं के मध्य में आप खड़े हैं। तो उस समय समझ में आता है कि ये जो आकाश तत्व है इसका महत्व क्या है। और ये जो अलग अलग प्रकार के लैंड डीलिंग्स होते हैं, ये है क्या? ये सारे जो ये जो भूमि है, स्पेस जिसे कहते हैं, ये स्पेस का आदान प्रदान इस बिजनेस में हो रहा है। तो ये आकाश का तत्व ये भी माया देवी इस्तेमाल कर सकती हैं हमें नम्र बनाने के लिए। और जो चौथा साक्षात्कार ये इस भौतिक सृष्टि से हमें ये मिल सकता है कि यही माया देवी इन पंच महाभूत को हमें दी हैं, जिनको लेकर हम भगवान की सेवा कर सकते हैं इस शरीर को लेकर। तो माया देवी भगवान श्री कृष्ण को संतुष्ट करने के लिए, जैसे कि भगवान श्री कृष्ण को संतुष्ट करने के लिए भगवान ने क्या कहा, पत्रम पुष्पम फलम तोयम, कि एक फूल एक फल एक पत्ता थोड़ा सा जल ये अर्पित कर दो। और ये सब मिलेगा कहां से, माया देवी सृष्टि से मिल रहा है। तो ये सारे जो तत्व हैं माया देवी ये हमें दे रही हैं, और इसलिए हम भगवान को ये सब कुछ अर्पित कर पा रहे हैं। भगवान को जो भोग अर्पित करते हैं रोज हम, वो सब अन्न कहां से ला रहे हैं, सब इस सृष्टि से ही तो हम पाए हैं। तो इसलिए श्रीमती राधा रानी वो एक सुंदर श्लोक में वो गा रही हैं, रूप गोस्वामी ये राधा रानी का भाव बता रहे हैं इस श्लोक में, कि कैसे राधा रानी, हालांकि वो तो दिव्य हैं, उनका जो विग्रह है वो भी दिव्य है, सच्चिदानंद है, परंतु उनका भाव यही है कि मेरा ये शरीर भी पंच महाभूत से बना हुआ है। ये नम्रता से अपने भाव को व्यक्त कर रही हैं श्रीमती राधा रानी। और श्लोक में वो कहती हैं कि कैसे हे कृष्ण, मैं अपने हर एक तत्व को आपकी सेवा में लगाना चाहती हूं, वो कहती हैं। तो रूप गोस्वामी द्वारा रचित ये श्लोक, पंचत्वं तनु एति भूत निवह स्वाम शेर मिलंतु ध्रुवम धातारम प्रणिपत्य हंत सिरसा तत्रापि वृंते नीलम। यहां पर श्रीमती राधारानी कहती हैं कि मेरे अंदर जो पृथ्वी तत्व है, हे कृष्ण, ये पृथ्वी तत्व आपकी सेवा में लगा रहे, कि जब ये शरीर मेरा अंत हो जाएगा तो ये जो पृथ्वी तत्व मेरे शरीर का, वो उस पृथ्वी में जाए जिस पर आप अपने चरण रखो। तो इस प्रकार से मेरा जो पृथ्वी तत्व है वो आपके चरणों के नीचे आपकी सेवा में लगा रहे, ये उनका भाव। फिर वो कहती हैं कि मेरा जो जल तत्व है मेरे अंदर, वो जल तत्व इस शरीर के खत्म होने के पश्चात ये जल तत्व उस जल में मिल जाए जिस जल में आप आपकी जल क्रीड़ा लीला कर रहे हो, तो उस जल में मेरा जल तत्व चला जाए। और फिर ये जो अग्नि तत्व है मेरे शरीर का, वो अग्नि तत्व उस अग्नि में मिल जाए जिस अग्नि की रोशनी में आप अपने आप को सजाते हो रोज, तो उसमें मेरा अग्नि तत्व मिल जाए। और ये जो आकाश तत्व है वो उस आकाश में मिल जाए जिस आकाश के नीचे आप अपनी लीला कर रहे हो हे कृष्ण। और ये जो वायु तत्व है वो उस वायु में मिल जाए जिस वायु से पंखा हिला रहे हैं आपके पुजारी आपकी आरती में, उस वायु में उस पंखे में मेरा वायु तत्व मिल जाए। तो इस प्रकार से श्रीमती राधारानी बता रही हैं कि मेरा हर एक तत्व आपकी सेवा में लगा रहे हैं कृष्ण। तो यहां पर भी यही साक्षात्कार के विषय में हम चर्चा कर रहे हैं कि यही पंच तत्व को हम भगवान की सेवा में, जो शरीर उन तत्वों से बना है, भगवान की सेवा में यदि इस शरीर को लगाएं तो हर एक तत्व को हम भगवान की सेवा में लगा रहे हैं। और यही समझना चाहिए कि भगवान स्वयं कहे हैं कि हमें और कुछ बाहर से लाना नहीं भगवान को संतुष्ट करने के लिए, सब कुछ इस भौतिक प्रकृति से ही उत्पन्न हुआ है, वहीं से लेकर भगवान को अर्पित करना है। ऋषिकेन ऋषिकेश सेवनम भक्तिर उच्चते, यही इंद्रियों को, इंद्रियां वही हैं जो कि माया की सेवा में लगी हैं, वही इंद्रियों को भगवान कृष्ण की सेवा में लगाना है। जैसे कि एक उदाहरण दिया है कि एक छोटा सा बालक जिसे लिखना पढ़ना नहीं आता, उसके हाथ में यदि आप पेंसिल दे दो तो छोटा सा बालक क्या करेगा उस पेंसिल से, सब जो किताब है खराब कर देगा। और वही पेंसिल यदि किसी पेंटर के हाथ में, यदि किसी कलाकार के हाथ में आप दो, तो वही पेंसिल से वो बहुत सुंदर चित्र निकाल सकता है। तो इंद्रियां वही हैं, पेंसिल बदला नहीं है, वैसे ही इंद्रियां बदली नहीं है हमारी। जब हम भौतिक चेतना में थे तो हमारी इंद्रियां वही थी, और जब आध्यात्मिक चेतना में आते हैं तो इंद्रियां वही रहती हैं। परंतु हमें केवल ये प्रशिक्षण दिया जाता है कि अब इन इंद्रियों को भगवान की सेवा में कैसे लगाना है। जैसे कि रूप गोस्वामी द्वारा रचित उपदेशामृत की चर्चा हम कर रहे हैं, तो उसमें रूप गोस्वामी पहले कहते हैं कि कैसे पहले इंद्रिय भोग को बंद करना है और फिर उस इंद्रिय भोग को भगवान की इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाना है। दोनों बताते हैं। जैसे हमें याद है कि एक परिवार में हमने अनुभव किया कि एक उनका छोटा सा लड़का बालक था, वो बालक बहुत मस्ती उधम कर रहा था, और रोज जैसे ही वो बालक जगता उसकी उधम शुरू हो जाती, उधम खोर। तो हमारे एक भक्त इनके घर गए थे हैदराबाद में, तो वहां पर जब इनके घर में देखा तो ये लोग, इन्होंने एक बहुत ही विचित्र प्रकार का एक उपाय ढूंढ लिया था उनके वो उधम कोर बालक का उधम बंद करने के लिए। और उपाय यह था कि इस बालक का जो निक्कर था उसमें कोई बटन नहीं लगाया था। तो इनको पूछा गया कि ये क्या उपाय हुआ, तो माता ने कहा कि इतना उधम कोर है कि जब हमने इसके निक्कर की बटन निकाल दी तो इसे दोनों हाथ निक्कर को पकड़ के रखना पड़ता है, नहीं तो निक्कर गिर जाएगी नीचे। तो दोनों हाथ व्यस्त रहते हैं इसके 24 घंटे, तो या तो इसे बैठा रहना पड़ता है, खड़ा हो जाए तो दोनों हाथ पकड़ेगा, और दोनों हाथ यदि पकड़े हैं निक्कर को तो फिर क्या उधम मचाएगा फिर। तो हम हंस रहे थे, उपाय तो बहुत अच्छा ढूंढा। तो इसलिए उसके निक्कर पर बटन नहीं लगा। और एक दूसरे भक्त उनके उनके घर में उनका बालक, वो बहुत कूदता फांदता यहां वहां, तो उनके जो पिता, उस बालक के पिता, उन्होंने उसे वो स्किपिंग सिखाया, इसमें कूदते रहो, इसके अंदर कूदो बहुत अच्छा, देखो इसमें कूद के बताओ। तो बालक, इतनी उसको कूदने की आदत, तो उसमें वो कूदता रहता, वो स्किपिंग करते हुए। और फिर उनके पिता उनको बताते कि अब कूदते कूदते हरि बोल हरि बोल हरि बोल ऐसा बोलते रहो, तो जैसे ऊपर जाते हो बोलो हरि बोल, तो वो ऊपर जाता हरि बोल हरि बोल हरि बोल। तो जब पूछा गया कि भाई यदि हरि बोल ही बुलवाना है तो फिर ऐसे इतनी जोर जोर से कुदाने की क्या जरूरत है, तो उन्होंने कहा कि देखो आगे चलकर जब बड़ा होगा तो इसे कीर्तन में भाग लेना है, और कीर्तन में सब कूदते हैं, तो इसे कूदने की प्रैक्टिस हो रही है, परंतु हमने देखा कि जब ज्यादा कूदते हैं भक्त तो हरि बोल नहीं निकलता फिर मुंह से, फिर केवल मैं और ऊपर कूदूंगा, तो फिर केवल वो स्पर्धा होती है। तो इसे दोनों की आदत मिल रही, कूदने की और कूदने के साथ हरि बोल, दोनों की आदत मिल रही। तो यहां पर ये हम सोच रहे थे कि ये दोनों उदाहरणों में, कि पहले उदाहरण में बटन निकाली गई ताकि उसकी इंद्रियां वश में रहे, परंतु यहां पर इस उदाहरण में इस बालक की इंद्रियों को भगवान की सेवा में उपयोग में लाए। तो हमें भी वही करना है, सबसे पहले बटन निकाल लेनी, परंतु इससे ऊपर है कि हमें हमारी इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाना है। तो जब इंद्रियों को भगवान की सेवा में हम लगाएंगे तो वो यहाँ पर जो बताया गया है कि ये जो चौथा साक्षात्कार है कि हम कैसे ये जो तत्व हैं इस भौतिक संसार के, विशेष रूप से जो पंच महाभूत, ये हमारा जो शरीर जिससे बना है, और केवल पंच महाभूत से नहीं ये शरीर बना है, अष्ट महाभूत से, और कौन से तीन भूत हैं, तीन तत्व हैं, मन बुद्धि और अहंकार, कि न केवल ये जो पांच तत्व हैं, ये पांच तत्व तभी भगवान की सेवा में लग पाएंगे जब हमारा मन, हमारी बुद्धि और वो अहंकार जब इस नम्रता में परिणित होगा कि हम भगवान के सेवक हैं। तृणादपि सुनिचेन तरोर इव सहिष्णुना अमानिन मानदेन कीर्तनीय सदा हरि। तो ये साक्षात्कार जब हम इस भौतिक सृष्टि से लेंगे तो महाराज अंतरिक्ष के अनुसार हम इस भौतिक सृष्टि में रहते हुए इस भौतिक सृष्टि में बंधेंगे नहीं और इस भौतिक सृष्टि से मुक्त होकर हर समय के लिए नित्यकाल भगवान के धाम को प्राप्त होंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो यदि आप लोगों को, हम सबको यदि इस भौतिक सृष्टि से मुक्ति प्राप्त करनी है तो अवधूत ब्राह्मण और महाराज अंतरिक्ष, इन्होंने जो उदाहरण स्थापित किया है, हमें यहाँ पर ही रहते हुए केवल हमारे दृष्टिकोण को बदलना है और इस भौतिक जंजाल से मुक्त होना है। श्रील प्रभुपाद की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। पुनः यात्रा का अनाउंसमेंट है। पुनः यात्रा अगले महीने 24 तारीख से 27 तारीख पुनः की यात्रा, जो वार्षिक यात्रा होती है, तो जो भक्त इस पुनः यात्रा में आना चाहते हैं वो लोग रजिस्टर कर लें अपने आप को। गोपालन प्रभु यहाँ पर हैं, यहाँ पर आकर आप इनको नाम दे सकते हैं। और अंतिम तारीख अगले रविवार अंतिम तारीख है पुना यात्रा के रजिस्ट्रेशन के लिए, तो आप लोग उससे पहले आना चाहते हैं रजिस्टर कर लीजिए अपने आप को।
जो भी भक्त पहली बार यहाँ पे उपस्थित हुए मैं उनसे नम्र निवेदन करता हूँ कि 2 मिनट के अपनी जगह पे खड़े रहे। बहुत बहुत धन्यवाद, आप अपना अमूल्य समय देकर हमारे सत्संग कार्यक्रम में आए, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद। इन सब भक्तों का हम 3 बार जोर से हरि बोल करके स्वागत करेंगे। हरि बोल हरि बोल हरि बोल। कृपया प्रसाद से पहले यहाँ पर आके सचिन प्रभु से मिले ताकि वो आपको अधिक जानकारी इस हमारी संस्था के बारे में बताएंगे। कृपया बैठ जाए। हरे कृष्णा। और एक अनाउंसमेंट ऐसे है, आने वाले 27 तारीख को गुरुवार है, उस दिन श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर अपीयरेंस आविर्भाव दिन मनाया जाएगा, तो दोपहर को 12 बजे मंदिर में उसका प्रोग्राम होगा। अच्छा, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर तिरुभाव दिवस है उस दिन, तो 12 बजे यहीं पे मंदिर में कार्यक्रम होगा। हरे कृष्णा।
हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे हरे